ऑप्शन अमेरिका के एक लेखक टेनसी विलियम 1931 छोटी सी लघु कथा लिखी थी जिसका नाम था समथिंग फ्रॉम टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय एक लेखक का नाम। उस कहानी में उसने लिखा एक युवक है जिसका नाम जैकोब है और एक कन्या है जिसका नाम लीला है। रशिया में वो लोग रहते हैं, दोनों को बहुत प्यार है। जो जैकोब है उसके पिता चाहते हैं कि वो कॉलेज जाए और उनका एक बहुत बड़ा दुकान है किताबों का। वो कॉलेज जाता है और जैसे कहा वो जो कन्या है वो भी वहीं पर है। और कुछ समय के बाद वो जैकोब के पिता जो होते हैं शरीर छोड़ देते हैं तो दुकान की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है और तभी उन दोनों का विवाह हो जाता है। शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी होती है लीला, उसका सारा रस होता है पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, आगे जाना है, कुछ करके दिखाना है। और उसका सारा ध्यान होता है उस दुकान में और वो चाहता है कि मेरी पत्नी भी इस दुकान को देखे, यहाँ इतनी सारी जो किताबें हैं। पर वो नहीं मानती। कोई एक एजेंट आता है जो उसके पत्नी की आवाज़ की तारीफ करता है और बहुत सारी ऑफर देता है और वो यूरोप चली जाती है हमेशा के लिए अपने करियर को बनाने के लिए। जाते जाते जैकोब उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम वापस आओगी। और वो उसको उस दुकान की एक चाबी दे देता है पर वो चली जाती है। और जैसे ही वो चली जाती है वो इतना दुखी हो जाता है, इतना दर्द और दुखों में डूब जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था वो इस तरह छोड़कर चली जाएगी। वो तो सोचता था उसका मुझसे बहुत प्यार है पर उसे तो अपने करियर की, अपने पढ़ाई की और उसे नाम और सम्मान चाहिए था और वो चली जाती है। वो जैकोब इतना दुखी हो जाता है कि वो शराब में तो नहीं पर किताबों में अपने आप को डुबो देते। इतना बड़ा जो किताबों का दुकान था, एक स्थान चुनता है और दिन रात किताबें पढ़ते रहता है, किताबें पढ़ते रहता है। उसका इंतज़ार करते करते उसकी यादों में 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल के बाद वो लीला वापस आती है पर तब तक सब कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? वो उसके दुकान पर जाती है, वो किताब पढ़ रहा होता है, वो उसकी तरफ देखता है, उसको पहचान नहीं पाता, उससे पूछता है आपको क्या चाहिए। उसे धक्का बैठता है, ये क्या इसकी हालत हो गई कि ये मुझे तक भूल गया। तो वो कहती है मुझे एक किताब चाहिए पर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसे याद दिलाने के लिए वो कहती है कि उस किताब में ऐसी एक कहानी है एक युगल की जिसमें से जो पत्नी है वो उस पति को छोड़कर चली जाती है और बहुत सालों के बाद याद आती है वापस। अब याद आया कुछ? तो वो जैकोब कहता है याद नहीं आ रहा है पर मुझे लगता है ऐसी कोई कहानी मैंने किताबों में पढ़ी है, समथिंग फ्रॉम टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय नाम का एक लेखक है, शायद उसकी ये कहानी है। और जैसे ही वो सुनती है उसकी ये बात, वो चाबी उसी टेबल पर रख देती है और हमेशा के लिए लौट जाती है। 15 साल और वो जैकोब फिर से किताबों में डूब जाता है। इंतजार करते 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 जीवन ही इंतजार बन गया। इंतजार करते करते जिसकी याद में था और जिसका इंतजार कर रहा था वो आया और वो आकर चला भी गया और ये किताबें भी पढ़ता रह गया। जिसका इंतजार कर रहे थे लंबा समय से, जिसकी यादों में थे, वो आ गया, सामने खड़ा है पर हम पहचान ही नहीं पाए कि ये वही है। सुबह की मुरली में था बुट्टू। कौन है वो? बाप के तो बने हैं पर बाप को पहचानते नहीं। जानवर भी अपने बाप को याद रखते हैं, तुम नहीं रख सकते। 15 साल तक इंतजार करता रहा और इंतजार में यही भूल गया किसका इंतजार कर रहा हूं। और जब वो आया तो चूक गया। जन जन से आत्मा भी परमात्मा का इंतजार कर रही है और जब वो अब आया है तो ऐसा ना हो कि हम भी चूक जाए, वो भी खड़ा रहे और हम पहचान ही नहीं पाए कि ये वही है। पहचान भी ले तो समझ ना पाए, जान ना पाए उसने कही हुई बातों को अपने अंदर उतार ना पाए, तो हमारी भी हालत उस जकूब की तरह हो जाएगी जो वापस गमगीन दुखी और किताबों में डूब गया। तो जो आया है उसी को याद करना है। आज सुबह की मुरली में बाबा ने अपने जीवन का अनुभव सुनाया उस जमाने में। किस जमाने में? एक उदाहरण दिया, जब एक ही घर में बहुत सारी बहुएं बहुत शांति रहती थी। बाबा कहते हैं कि उस जमाने में बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, वैराग था। बच्चे बाप से पूछते, बाबा क्या आप हमको याद करते हो? बाबा कहते हैं मुझे तो नाम भी याद नहीं, यहां तो हम सब, हमको तो सब भूलना है, ना बिसरो ना याद आओ, ना बिसरो ना याद आओ। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, ना बिसरो ना याद आओ। खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद आओ, अर्थात केवल वही याद आए उसको नहीं बिसरना, भूलना, और बाकी सबको भूल जाना। बाबा ने कहा बाप को नाम तक याद नहीं किसी के, अब तुम्हारा नाम याद करते बैठे या बाप को याद करते? तो दो प्रश्न है, किस किस को भूलना है और किस किस को याद करना है। पहले हम लेंगे किस किस को भूलना है, ऐसी 8 बातें, और किस किस को याद करना है वो कल की अव्यक्त मुरली का रिविजन, 8 बातें उसमें से। किस किस को भूलना है? बाबा ने कहा मुरली में, हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही है। कितना अच्छा वाक्य है आज की मुरली में, हम यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। सबसे पहला जो भूलना है वो है देह अभिमान, देह भान, देह अहंकार। इतना सूक्ष्म है, अंदर समाया हुआ है, हमें नहीं पता कि हमारे में भी देह अभिमान है। और देह अभिमान के बहुत सूक्ष्म रूप है। एक उसका जो रूप है वो है इमोशंस। इस तपस्वी मार्ग पर टू मच इमोशनल होना मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति बहुत इमोशन से भरा है संसार में उसे अच्छा माना जाता है, भक्ति में तो बहुत अच्छा माना जाता है और होना भी चाहिए, परंतु अगर इमोशंस, भावनाएं विवेक पर हावी हो रही है और व्यक्ति मोह में फंसा है, सुबह की मुरली में था हद का मायावी मोह, सुबह की मुरली में एक वाक्य था हद का मायावी मोह, बहुत दुख देता है। इस ज्ञान मार्ग में कहीं कहीं व्यक्ति को पत्थर जैसा बनना है, दीवार जैसा बन जाना है, उल्टे घड़े जैसा बन जाना है, मुर्दे जैसा बन जाना है, आंख बंद, अंधा, गूंगा और बहरा भव, तो ही बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। जितनी लोगों की बातें सुनेंगे उतना दुख होगा, नहीं तो क्या क्या बन जाना है? पत्थर पहला, दूसरा दीवार, तीसरा उल्टा घड़ा भव, चौथा मुर्दा। मुर्दे के सामने जाके उसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करो, खुश होता है क्या? तुम कितने अच्छे हो, या उसको गालियां देकर आओ, उठ के बोलता है मुझे ऐसा क्यों बोला। और पांचवा अंधा, बहरा और गूंगा। टू मच इमोशंस डिस्ट्रॉय कर देते, चट्टान की तरह बन जाओ। और एक है चट्टान, बिल्कुल ही लेना, दीवारें चीन, चीन की दीवार की जैसा। तो ही सेफ रह सकते, नहीं तो दुख होते रहेगा। दर्द होते रहेंगे। हम ही अपने दुख के ब्रह्मा हैं, अपनी पीड़ा के विष्णु और अपने खुशी के शंकर। हमारा जो दुख है किसने निर्माण किया है? किसने व्यक्ति ने? इस ब्राह्मण परिवार ने? परिस्थितियों ने? परिस्थितियों को क्या लेना देना है तुम्हारे दुख से? हमने खुद निर्माण किया है कड़ी मेहनत से। किसको निर्माण किया है? अपने दुख को। और पालना की है अपने दर्द की। कब का खत्म हो गया होता, पर हमने दिन रात एकजुट करके उसे मरने नहीं दिया। वो दर्द अंदर रहे सीने में, वो जलन, वो आग, बचा के रखा उसको संसार के आंधी तूफान, भगवान के सुख शांति के वाइब्रेशन से, और उसे जलने दिया। वो दर्द की मशाल धधक रही है। हम ब्रह्मा, हम विष्णु बनके अपने ही पीड़ा की पालना कर रहे हैं, और हमने शंकर बनकर अपनी खुशी का गला घोटा है। विनाश किया है अपनी ही खुशी का। किसने? हमने। ये हमारे ही यादगार है। हमारे जीवन का दुख देने का कोई, देने वाला कोई भी दूसरा नहीं है। इसके लिए जो ब्लेम साइकिल है, ब्लेम साइकिल, इसको ब्रेक करना है। ये किसी ने कुछ नहीं किया है, जो किया है तुमने किया है। तुम रचता हो अपने दुख के, निर्माण किया है कड़ी मशक्कत से। तो सबसे पहला जो भूलना है वो है देहाभिमान, देहभान, देह अहंकार। और उसके सूक्ष्म रूप में, सबसे सूक्ष्म रूप है टू मच इमोशनल, रोते रहना, बुरा लगना, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, खेल चल रहा है। रोना नहीं होता है इसमें। पाषाण हृदय। दूसरा, देह के संबंध। आठ चीजें भूलनी है। दूसरा, देह के संबंध, लौकिक संबंध। ज्ञान में कब से है, परंतु लौकिक का मोह गया नहीं है। मुरली में था हद का मायावी मोह, और उसी को सजाते रहते हैं, सेवाओं का नाम देते रहते हैं, पर अंदर से तोड़ निभाने के नाम पे मोह का ही पोषण चल रहा है। कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, सब खेल है इस सृष्टि के, इस नाटक में। इसके पहले वो कुछ और थे, अभी कुछ और है। जिम्मेदारी और बात है, परंतु जो विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा है उसे अपने ही जीवन में अप्लाई करना है। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरा, दुर्योधन कहता है कि वो आत्महत्या कर लेगा अगर मैं उसे राज्य ना दूं तो क्या मैं उसे करने दूं? क्या मेरा उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या वो मेरा पुत्र नहीं है? मेरे साथ अन्याय हुआ, क्या उसके साथ भी अन्याय में होने दूं? विदुर कहता है, महाराज दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, आपका रोग है। क्या है? रोग। कर्तव्य तो पूरा हो चुका है कब का, अभी जो रुके हुए हैं वो मोह के कारण रुके हुए हैं। तो देह और देह के सारे संबंध, या संबंधी भावने का, सबको भूल जाओ। मर चुके हैं सब के सब। तीसरा, देह की इच्छा या भोग। जन्म जन्म देह के भोगों में और देह की इच्छाओं में डूबे रहे। क्या मिला? अल्पकाल का सुख, उसके साथ इतना बड़ा दुख। सुख तो इतना छोटा, दुख बहुत ज्यादा उसके साथ हर बार। और उसके बाद में खोखलापन, उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद में कुंठा, एक दर्द, पश्चाताप। ये इंद्रियों के सुख डुबोने वाले हैं सबके सब, संयम के विरुद्ध है। देह के जो भोग है उनके प्रति दोष दृष्टि निर्माण करनी। और भोग इतने सस्ते नहीं है। भोग अपने साथ किसको लाते हैं? रोग को। कोई कहता है कि मैं दिन रात खाना पीना ऐश आराम करता हूं, एक साल के बाद बीमार हो जाएगा या उससे पहले। भोग इतने सस्ते नहीं है, कीमत चुकानी पड़ती है बहुत सारी। बहुत सारी चीजें पानी की तरह बह जाती है, स्वास्थ्य, आरोग्य, निरोग, सब कुछ, समय, शक्ति, पैसा, मन की शक्ति, ऊर्जा। इस ब्राह्मण जीवन में तो बहुत सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी परिस्थितियां आसपास, इधर उधर, आमने सामने आएगी। बहुत सूक्ष्म प्यूरिटी की एनर्जी चाहिए। तो देह के भोग दोष है उसमें। क्या दोष है भोग में? अल्पकाल के है और धोखेबाज है, और जितना दिखता है उतना नहीं है वो खुश, उसमें सुख। दूसरों को देखते हैं भोग करते हुए ऐसा लगता है ये बहुत खुश होंगे, हमें नहीं मिल रहा है, पर वैसा है नहीं। भ्रामक है, काल्पनिक है, क्षणभंगुर है, और थोड़ों के साथ बहुत ज्यादा दुख आता है। दुख लेकर ही है वो, पर हम उस दुख को नहीं देख पाते, केवल सुख को देख लेते और फंसते उसमें। ट्रैप, जाल है, जाल। इसके लिए वो सारे सुख जो हमें देहभान में लाते हैं, तिलांजलि देने नहीं है, ऐसे सुखों की नहीं चाहिए। तो तीसरा, देह के भोग और देह की इच्छाएं। चौथा, देह की स्मृतियां या संस्कार। जो चीजें भूलनी है वो देह की स्मृति। देह याद रहता है। महात्मा बुद्ध ध्यान में मगन है, कुछ लोग एक महिला का पीछा कर रहे हैं। वो उनको पूछते हैं कि आपने उस महिला को देखा? वो कहते हैं कोई तो गया, पर वो स्त्री थी पुरुष थी वो मुझे पता नहीं, कोई तो गया है बस। वो कौन थी, वो मुझे कौन था थी पता नहीं। आंखें खुली है परंतु शरीर की तरफ कोई आकर्षण नहीं है। तो देह के संस्कार या स्मृतियां, देह याद रहता है। अगला, देह के धर्म। ये इतना नहीं है, जिस घर में जन्म लिया वो धर्म याद रहता है कईयों को, हम ब्राह्मण हैं, हम ऐसे हैं वैसे। अगला है देह का स्थान। हम इस स्थान से, हम पंजाब से, हम कर्नाटक से, तो उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं जो उस स्थान से है, और अपना एक संगठन निर्माण करते हैं। फिर साथ में उठना, साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में योग, साथ में वॉकिंग, और मिलने के बाद उसी भाषा में बोलना, जहाँ की यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज एक ही है, हिंदी। हाँ, वो दूसरी बात है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है और उसी में उसी से बोलना है, वो दूसरी बात है। पर जितना हो सके भाषा को एक ही रखना है। ऐसा तो हमने कभी किसी को नहीं बोला, तुम भी परमधाम से और हम भी परमधाम से, बहुत खुशी हुई मिलके। पर ऐसा हमने अवश्य बोला है, गुजरात से? कहाँ से? गुजरात से, हम भी तो वहीं से। कौन सा सेंटर? अच्छा वो, वहीं से तो हम भी निकले, चलो इसी बात में साथ साथ चाय। देह के स्थान को भी भूल जाना है, एक ही पहचान है, मधुबन निवासी या तो परमधाम निवासी, बस। हाँ वो निमित्त के जो बोलचाल के लिए बोलना पड़ता है वो एक कमजोरी है, वो अलग बात है, पर उसमें अपना दल नहीं बना के रखना है। देह का स्थान, स्थान से अब कोई लगाव नहीं रहा। जैसे एक जेन मास्टर के पास पेकिंग से, बेजिंग का पुराना नाम पेकिंग था, तो वो आता है, वो जेन मास्टर उसको पूछता है, अच्छा तुम कहां से आए? वो कहता है पेकिंग से आया। वो पूछता है वहां पे चावल का क्या भाव है? वो चुप रहता है। फिर पूछता है गेहूं का क्या भाव है? वो शिष्य चुप रहता है। वो कहता है क्या है? तुम वहां जन्म लिया ना तुमने और अब तक वहीं थे, तुमको ये भी नहीं पता? वो कहता है मैं जिस स्थान को छोड़ चुका अब उसके भाव से मुझे, चावल अनाज के भाव से कोई लेना देना नहीं, मैं यहां अब शिक्षा ग्रहण करने आया हूं, उस देश को उस स्थान को छोड़कर आया हूं। उस स्थान से क्या आकर्षण, अब मर चुका है वो स्थान। खुशी होती है छुट्टी मिल गई जाने की। क्यों छुट्टी, क्यों खुशी होती? क्या यही तो जीवन है, यही सब कुछ है। अगला है देह की भाषा। अपनी भाषा वाला मिल गया तो कब घंटों बीत जाते पता नहीं चलता है। लंबी लंबी बातें, यहां की बातें और उधर की बातें, और यहां और वहां गया, वहां गया, यहां की ब्राह्मण संसार समाचार, उधर के सेवा केंद्र में क्या चल रहा है, अच्छा वहां क्या हो रहा है, अच्छा कल अब फिर मिलेंगे इसी टाइम, आज की मीटिंग पूरी हुई, टू बी कंटिन्यूड। देह की भाषा, उसके बाद देह की दुनिया। देह की इस दुनिया को बाबा ने आज की मुरली की लास्ट लाइन, भूल जाओ अच्छा से पहले, इस दुनिया को ही भूल जाओ। भूलने का अर्थ क्या? इसका मतलब ये तो नहीं ना आंखें बंद कर दे, अपने आप को बंद कर दे। दुनिया को भूल जाओ अर्थात दुनिया के आकर्षणों में आंख ना डूबे। जैसे सुकरात था, सन्यासी टाइप का व्यक्ति था, पर रोज मार्केट जाता था, एक एक चीज को घूर घूर के देखता था और वापस आता था। लोग कहते थे तुम ठहरे सन्यासी, फिलोसोफर, दार्शनिक, और तुम्हारा अभी तक मोह नहीं गया, क्यों जाते हो मार्केट में? वो कहता है कि मैं रोज मार्केट इसलिए जाता हूं, वहां की चीजों को देखता हूं और सोचता हूं कि मैं इन सब वस्तुओं के बगैर कितना खुश हूं, ये देखने जाता हूं कि संसार में कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनके बिना भी मैं इतना खुश हूं। परसों, तीन दिन पहले मुरली थी, तुम वनवाह में हो, वनवास में हो, ऊंचा पहनूं, ये करूं वो करूं, तुम्हारी ये सब इच्छा नहीं होनी चाहिए, तुम्हें वही करना है जो श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में किया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बाबा ने कहा तुम वनवास में हो, ये भूलो मत, वनवाह में हो, तुम्हारी दिनचर्या वही होनी चाहिए जो राम की दिनचर्या थी, सुबह से रात तक। उसमें रावण को मारना भी समाहित है, असुरों का विनाश भी उसी के लिए तो राम आया है। उस 14 वर्ष में ही तो सब कुछ बड़े बड़े कार्य किए, असुरों को मारा, परित्राणाय साधुनाथ विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुदरि विविध शरीरा, उसी के लिए तो वो आया था, विप्रसंत सुरधेनु, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए। देह की दुनिया, आंखें बंद करके नहीं बैठ जाना है, देखना है इस दुनिया को और इसकी व्यर्थता को देखना है, आंखें नहीं बंद करके बैठना है, देखना है ये है संसार। न्यूज़पेपर पढ़ो और देखो रावण की क्या प्लानिंग चालू है, इस पर्पस के लिए देखना है, नहीं तो दमन होगा। हमको तो देखना नहीं, हमको ये नहीं करना, हमको वो नहीं, देखो और व्यर्थता को देखो, ये है असली स्वरूप उसका। सब कुछ व्यर्थ है, यहां पर असार है संसार, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब कुछ व्यर्थ है, यहां कुछ भी पाने योग्य नहीं है। यहां एक परमात्मा ही सार स्वरूप है, बाकी सब कुछ असार। तो ऐसी आठ बातें, देहभान, देहाभिमान, देहंकार पहला, देह के संबंध, देह के की भोग या इच्छाएं, देह की स्मृतियां या संस्कार, देह के स्थान, देह की भाषा, देह के धर्म, और आठवां देह की दुनिया। ना बिसरो, ना बिसारो, ना याद रखो। अभी याद क्या क्या रखना है, ऐसी आठ बातें। ये सारी आठ बातें हम निकालेंगे कल की जो शाम को अव्यक्त वाणी चली थी पाप दादा की, 17 मार्च 2007 की। आठ बातों की चर्चा बाबा ने की है उसमें। सबसे पहली बात, डेट फिक्स करो। क्या करो? डेट फिक्स करो। कौन सी? संपन्न, संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स करो। आज कौन किसको देख रहा है? शांति के सागर बाप और शक्ति के सागर, प्रेम के सागर और शक्ति के सागर बाप किसको देख रहे हैं? स्नेही बच्चों को, सिकेलेदी बच्चों को, लाडले बच्चों को, साथी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को। किसको देख रहे हैं? स्नेही बच्चों को, साथी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, सिकेलेदे बच्चों को, लाडले बच्चों को, ऐसे बच्चों को बाबा देख कर क्या कर रहे हैं? हर्षित, खुश हो रहे। तो सबसे पहला काम, आठ बातें बताइए, पहला काम डेट फिक्स करो। आज की तारीख 18 अक्टूबर, 18 जनवरी, कितने हो गए? 3 मास। डेट फिक्स करो। तो 3 मास की डेट फिक्स करते हैं। इस 3 मास में कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा जो अब तक नहीं किया, ऐसा जो सब कुछ करने के बाद भी वो कमी वो कमजोरी साथ साथ चल रही है, ऐसा जो एक दोष, एक खोट, एक डिफेक्ट, एक किचड़ा, एक दाग, एक कलंक, एक धब्बा आत्मा में अब भी लगा है, उसको सफाई अभियान चालू करना। ये सबसे पहली पॉइंट है। बिना लक्ष्य के लक्षण नहीं आते, ना ही लक्ष्य तक पहुंचा जाता है बिना लक्षण के। टारगेट, जब तक टारगेट नहीं हिलता नहीं आदमी। सुबह भी कहा था, जब सुखधाम बन रहा था पांडव भवन में, प्रकाशमणि दादी ने सबको टारगेट दिया था कि ये तारीख को ओपनिंग है, अब कैसे भी करके करना ही है वो तारीख से पहले, कैसे भी करके, क्योंकि तारीख दे दिए, इस तारीख को ओपनिंग है बस। जैसे घर में होता है ना, ये तारीख को शादी है, सोचते हैं कि आराम से करेंगे, सब लोग काम में लग जाते हैं, जो कभी एकदम निठल्ले, जो कभी काम चोर, वो भाई, दुल्हन का भाई, वो सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर बन जाता है। तो जब लक्ष्य सामने है, सब कुछ जागृत हो जाता है अंदर का, जब पता है ये तारीख तक करना ही है। जैसे विदेशी लोग साल में एक बार मधु बनाते हैं, 10 दिन में वो सारा लेके जाते हैं, जो यहां बैठे लोग 10 महीने में नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना ही टाइम है, बस इतने टाइम में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, सब कुछ ले लेना है। तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ले लेगा, ये पुरुषार्थ करना है। तो 3 मास का हर एक को अपना टाइम टेबल बनाना है, कब तक का? 18 जनवरी तक का, 3 मंथ्स। कुछ तो और क्या बनाना है वो कोई दूसरा नहीं आके बताएगा, क्योंकि हमारी कमजोरियों का दूसरों को क्या पता। हमारे जीवन में जो घटनाएं, जो अतीत, जो माजी, जो पास्ट हुआ है, उसका किसी को क्या पता। कोई खबर नहीं है किसी को हमारी कमजोरी की, क्योंकि हमारी कमजोरी इतनी सूक्ष्म है, हमें ही तो नहीं पता पूरी तरह से, दूसरा क्या जानेगा। दूसरा काम, लक्ष्य और लक्षण को समान कर दो। लक्ष्य और लक्षण को क्या कर दो? समान। पहले लक्ष्य फिक्स कर लिया, टारगेट फिक्सिंग, डेट फिक्सिंग, और अभी जो उसके लक्षण है अपने आप आने लगेंगे। जिस स्टूडेंट ने ये सोच लिया मुझे फर्स्ट आना है, अब अपने आप वो सब कुछ करेगा फर्स्ट आने के लिए। वो सारा छोड़ देगा, क्रिकेट देखना छोड़ देगा, वो वीडियो गेम छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, क्योंकि उसके सामने अब टारगेट है, लक्ष्य है। तो वैसे ही लक्षण आने लगेंगे। तो बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण। तो लक्षण जब और लक्ष्य लक्षण जब समान होगा, तब लक्ष्य प्रैक्टिकल रूप लेगा, बाबा के महावाक्य कल की मुरली से। ये दूसरा काम। तीसरा काम, एडिशन। कौन सी एडिशन करनी है? तीव्रता तो है, दृढ़ता की तीव्रता। दृढ़ता तीव्रता में क्या करना है, किसकी एडिशन करनी है? तीव्रता एक्चुअली पहले ही एडिशन है पुरुषार्थ में। एक है पुरुषार्थ, बाप दादा पुरुषार्थ को देखकर खुश होते, पुरुषार्थ की अभी आवश्यकता है, अमृत वेला बाबा से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, बाबा सुनकर खुश होते। और फिर कहा एडिशन कौन सी करो? दृढ़ता की एडिशन करो तीव्रता में। तीव्र कर रहे हैं पर उसको और दृढ़ कर दो, बस ऐसे ही करना है। अब जरा भी इधर उधर टाइम वेस्ट ना हो, अमृत वेला शक्तिशाली हो, मुरली का सारे दिन भर चिंतन चलता रहे, ऐसा कोई समय ना हो कि मुरली चिंतन कम हो जाए। आज की मुरली में उगारते रहो है ना, आज की सुबह की मुरली में एक लाइन आई है, बाप तुमको ज्ञान समझाते हैं, इस ज्ञान को उगारते रहो। सोचते रहना है ये क्या कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, इसमें क्या राज है, उसमें क्या राज है, क्यों कहता है वो ऐसा, अपने आप से पूछते रहना। तीसरा अटेंशन, एडिशन। चौथा सेल्फ चेकिंग, अपनी चेकिंग करते रहो, मेरा पुरुषार्थ सदा तीव्र है, सदा तीव्र पुरुषार्थ हो रहा है। सदा अर्थात हर समय, हर स्थान, किसी भी व्यक्ति के साथ। स्थान बदल गया तो पुरुषार्थ बदले, ऐसा ना हो। समय बदल गया, सुबह बहुत अच्छा है, शाम को बहुत अच्छा है, दिन में गुमशुदा, कहां रहते हैं वो हमको ही नहीं पता। और इन लोगों के साथ है अच्छे तीव्र पुरुषार्थी, तो अच्छा पुरुषार्थ, उधर गए तो गए मधुबन में है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ, वहां गए तो खलास। आज की मुरली में ना बाहर जाते हैं खलास, फिर कहते हैं हाँ ठीक है सतयुग में तो आएंगे ना, चंडाल ही सही, दास दासी ही सही। आज सुबह है क्लास में मुरली में, यही ठीक है चलो। वो एक भाई था, वो कहता था कि ज्यादा ये सब पुरुषार्थ विषार्थ में हमको नहीं इंटरेस्ट है, क्या करना है पुरुषार्थ, मेरा अपना पद फिक्स है, उधर से लक्ष्मी नारायण आएंगे, इधर से बचाऊंगा। सुनो सुनो सुनो, लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, वो गए, काम पूरा हुआ। अब ये पद पाने के लिए पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, अनाउंसमेंट ही तो करनी है बस। सहज योगी, वो आ गए, वो गए, खत्म। अब इसमें तो क्या करना है, ये सब करने की क्यों जरूरत है, जिसको बनना है लक्ष्मी नारायण बने, हम तो अनाउंस करेंगे, तो लक्षण भी वैसे ही आएंगे। तो चौथा क्या बताया, सेल्फ चेकिंग, मेरा पुरुषार्थ सदा तीव्र है। फिर पांचवी बात जो याद रखनी है वो है 3 प्रकार की सेवा। कौन कौन सी? मन से, मन से अनुभव कराओ, वाचा से ज्ञान के खजाने का परिचय दो, और तीसरी सेवा कर्मणा नहीं है, चलन और चेहरे से क्या करो? चलन और चेहरे से दुआएं नहीं दो, चलन। संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप दिखाओ, अनुभव कराओ। संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप अनुभव कराओ। कितनी बड़ी बात बोल दी। जरूरी नहीं है जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाना है किसको। हमारा ऑरा वाइब्रेशंस भी तो कुछ है। जरूरी है क्या कोई आए तो उसको सुनाना चालू कर दो? हम कुछ ना बोले तो भी सेवा होगी। हमेशा बोलना ही जरूरी नहीं है ना। बाहर वालों के लिए बात कर रहे हैं, दूसरे आते हैं ना, और वो लोग तो उन्हीं से ज्यादा सीखते जिन्होंने कुछ नहीं बोला था, जो मौन से वधारी थे, उनसे ज्यादा सीख कर जाते। कोई भी हो सकते हैं वो, उनसे ज्यादा सीखते हैं। हमने देखा है कि जब हमसे कोई प्रश्न पूछता है, चार लोग आए हैं उसमें से एक बैठ के प्रश्न पूछता है, पर वो जो तीन है जिन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा और जिनका कोई प्रश्न नहीं, उन्होंने ज्यादा समझा और ज्यादा ग्रहण किया। और जिसने पूछा उसका सारा ध्यान पूछने पर है, उत्तर में तो रस ही नहीं है, क्योंकि उत्तर तो पहले ही पता है, क्योंकि इसके पहले भी वो प्रश्न कईयों से पूछ चुके हैं। जो भी नया मिला उससे पकड़ के वही प्रश्न पूछते हैं, क्या करूं, जॉब करूं या मधुबन में आ जाऊं, उत्तर इसका पहले ही पता है। रस उत्तर में है ही नहीं, रस है प्रश्न पूछने में। तीन प्रकार की सेवा कब करनी है? अलग अलग, एक साथ क्यों? समय कम है। कितनी अच्छी बात बोलती। कब बोली? 2007 में। समय कम है, अपने आप को बताना है समय कम है, क्या कर रहा है, कौन सी प्लानिंग चालू है अंदर, नई दुनिया बसाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे कुमार? अपनी दुनिया जिसमें हम तुम, उसके बाद में अगला वी, वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल। तुम्हारी वृत्ति में किसी के लिए जरा भी उल्टे वाइब्रेशंस ना, उल्टी वृत्ति ना हो, निगेटिव ना हो, कुछ भी उल्टा समाया ना हो, खिटपिट ना हो, ज्ञान के हिसाब से भी खिटपिट ना हो, क्योंकि किचड़ा ना हो, क्योंकि जैसे वृत्ति होगी वैसे वाइब्रेशंस बनेंगे, वैसे वायुमंडल, वैसे वाइब्रेशंस फैलेंगे और वैसा ही वायुमंडल बनेगा। तो वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल, इसके लिए अपनी वृत्ति को कैसे करो श्रेष्ठ, रूहानी, शक्तिशाली, शुभ भावना, शुभ कामना वाली वृत्ति, किसी के लिए भी अंदर कीचड़ा समाया हुआ ना, चाहे कोई भी हो। दो उदाहरण दिए, कौन से? एक रॉकेट का, जैसे रॉकेट तेज गति से जाता है वृत्ति भी तेज गति से जाती है। दूसरा उदाहरण मधुबन का, जैसे मधुबन ब्रह्मा की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि है, वहां के वाइब्रेशंस बनाए हुए हैं, बने बनाए अनन्य आत्माओं के द्वारा। तो वैसे ही तुम भी अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ कर दो। वृत्ति का आधार संकल्प और संकल्प का भी आधार भावना है। तो हमारे मन में किसी के लिए कुछ भी निगेटिव होगा तो परेशानी होगी, बाबा ने कहा वेस्ट चलेगा। तो क्या रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहा? बाबा आपको पता नहीं है, आपको पता चलेगा ना तो पता पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम बताने से पहले ही बाप को पता है कि ये रॉन्ग है, पर रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहो ऐसा बाबा थोड़ी ना कह रहे हैं। रॉन्ग को रॉन्ग ही कहो, राइट को राइट कहो, परंतु दिल में नहीं बिठाओ। वो यहां नहीं है, वो आगे है, रुको। तख्त वाली पॉइंट इधर नहीं है, आगे है अभी, वो दुआओं में है, इधर नहीं है। तो अंदर कोई भी किचड़ा ना समाना, रॉन्ग रॉन्ग है, ठीक है, राइट राइट है, दिख रहा है ये भाई बिल्कुल श्रीमद का पालन नहीं कर रहा है, वो का पालन नहीं कर रहा है, वो आंख बिल्कुल नाक के नीचे श्रीमद का उल्लंघन कर रहा है, हमारे साथ रहता है और ये सब हो रहा है, रॉन्ग दिख रहा है सब कुछ, दिखने दो, रॉन्ग रॉन्ग है, राइट राइट है, अंदर नहीं समाना चाहिए बस। 99 किसी की गलतियां हो, 99 छोड़ो, 9 गलतियां भी हम सहन नहीं कर पाते। बाबा ने 99 बहुत बड़ा ही फिगर बोल दिया, बहुत बड़ा फिगर है। हमारे डिपार्टमेंट में कोई काम करता है, उसने एक टाइम गलती की, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, चलो डिपार्टमेंट छोड़ो बेटा, कितनी बार माफ करेंगे? बाबा कहते 99 बार माफ करो, धैर्य का सागर ही बनना पड़ेगा। तो वृत्ति, उसके बाद है अगली पॉइंट सातवीं, होमवर्क। बाबा ने कहा होमवर्क याद है लास्ट टाइम जो दिया था, क्या था होमवर्क? दुआएं दो, दुआएं लो, ये सबसे सहज पुरुषार्थ है, सब कर सकते, बच्चे कर सकते, बूढ़ा कर सकते, युवा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं इसको, कोई भी। दुआएं दो, दुआएं लो, दो भाग है, दुआएं देना, दुआएं लेना। लेंगे कैसे? सेवा कर कर। किसकी सेवा? बड़ों की सेवा, यज्ञ की सेवा, प्रकृति की सेवा, अपनी सेवा, परिवार की सेवा, साथियों की सेवा, छोटों की सेवा, बड़ों की सेवा, समय की सेवा, अपनी सेवा, सब की सेवा करो, दुआएं। और दूसरा है दुआएं देना, अर्थात शुभ भावनाएं रखना। अब यहां पर एक प्रश्न भगवान बाबा ने किया है, अगर कोई बद्दुआएं दो दे तो क्या करे? इसके उत्तर में हम आएंगे, पहले लास्ट पॉइंट ले लेते हैं, आठवां। दादी को याद किया और जगदम्बा को याद किया। दादी के लिए बाबा ने कहा, उसके सामने भी बहुत बातें आई, परंतु क्या किया दादी ने, एक किसी का भी निगेटिव अपने मन में नहीं रखा। और यहां पर वो बात कही, चाहे 99 गलतियां किसी ने की हो, परंतु उसमें एक विशेषता है, वो कौन सी? मेरा बाबा कहने का हकदार है और उसका बाप से अटूट प्यार है, बस ये विशेषता है उसकी, ये सबसे बड़ी विशेषता है। शंकराचार्य नहीं कह सकता है मेरा बाबा, तीर्थंकर नहीं कह सकता है मेरा बाबा, कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट, कोई ईश्वर पुत्र, कोई पयंबर, पैगंबर, कोई अवतार, कोई धर्मावलंबी, कोई धर्म स्थापक नहीं कह सकता है मेरा बाबा, यहां बाबा का बच्चा, यही विशेषता है उसमें। और उसमें 99 उसने मिस्टेक्स किए, बाबा ने हमारी भी तो मिस्टेक्स, गलतियां माफ करती, तो हम उनकी नहीं कर सकते क्या? तो ये बात, तो ऐसी आठ बातें हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहला डेट फिक्स करो, दूसरा लक्ष्य लक्षण समान करो, तीसरा एडिशन करो दृढ़ता का, चौथा खुद की चेकिंग की सदा तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है, पांचवा तीन प्रकार की सेवा हमेशा होती रहे, हमारा मन हमेशा सेवा करता रहे, निरंतर मन से शुभ कामनाएं निकलती रहे, निकलती रहे, निकलती रहे, बदले का संकल्प ना आए, घृणा का संकल्प नहीं आए। उसके बाद में अगला वी वृत्ति को श्रेष्ठ, रूहानी, शक्तिशाली, पावरफुल बनाना है। उसके बाद में दुआएं दो, दुआएं लो, और लास्ट पॉइंट दादी का उदाहरण दिया है। अभी एक प्रश्न बाकी था, अगर कोई बद्दुआ दे तो क्या करो? आठ उत्तर दिए है बाबा ने, पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे। अगर कोई बद्दुआ है, पहले ये बताओ बद्दुआ कैसे देते हैं, उदाहरण? ये तो है ही ऐसा, इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, और इसकी नेचर ही ऐसी है, इसका बाप भी ऐसा ही था, पूरे खानदान को जानते हैं हम, वही संस्कार चल रहे हैं। और ये बाबा का बच्चा ही नहीं है नहीं ऐसा तो नहीं बोलो ऐसा बोलते ये तो हम ही बताते, ये तो कभी नहीं आने वाला, ये नहीं कभी बदलेगा, कभी बदलेगा, इसकी तो हमेशा का है ये, ऐसा आज का ही नहीं, हमेशा, कब से जानते हैं, इस पे कोई चीज का असर नहीं पड़ने वाला, उसको क्यों समझाते हो? हाँ, ये पता है ये किसी का नहीं सुनता, ये अपनी मन मर्जी करता है, इसको तो भगवान भी नहीं सुधार सकते बाबा से नहीं सुधरा, हमसे क्या सुधरेगा, छोड़ो इसको, बस इसमें खाने पीने के लिए भर्ती हुआ है इधर, ये आगे आगे करते रहता है स्टेज पर, भर्ती इसलिए हुआ है इधर इंस्टीट्यूशन में। तो ये सब हमारे मुख से निकलता रहता है, शायद हमको पता भी नहीं चलता है कब निकलता है, बस सुनने को मिलते रहता है, कानों में पड़ते रहते हैं आवाज। सबसे पहले काम आठ बातें करनी है बद्दुआ है अगर हमें कोई दे तो। पहला, जैसे तुम कोर्स करते हो तो क्या सिखाते हो, पॉजिटिव को निगेटिव कैसे करो, अब अपना कोर्स करो, क्या करो अब अपना ही कोर्स करो, अपना कोर्स कराओ। कैसे कराओगे, पूछो तुम कौन हो, फिर कहना हाँ मेरा फला फला नाम है, फिर उसको समझाना अरे नहीं तुम ये नहीं हो तुम आत्मा हो, फिर उसको पूछना बताओ कहाँ हो, कलयुग में हो कहाँ किस युग में, फिर कहना मैं कलयुग में हूं, उसको बताना नहीं तुम कलयुग में नहीं हो तुम संगम युग में हो, फिर पूछना उसको तुम्हारे पिता का नाम, फिर अपने पिता का नाम लेना, अपने आप से बातें कर रहे हैं, फिर अपने पिता अच्छा अरे नहीं वो नहीं हम आत्मा की पिता की बात कर पूछ रहे हैं, कोर्स कराने वाले हैं ना इधर, तो दूसरों को तो बहुत करा दिया पकड़ पकड़ के, छोड़ा नहीं जब तक पूरा नहीं होता, अब अपने मन को भी नहीं छोड़ना। वो कहेगा मुझे ये पता है, पता होगा मैं सुनाता हूं अब सुन, अरे मन मुझे अपनी प्रजा बनानी है, तुमने सुना नहीं सुना इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अपना पूरा पता के ही छोड़ूंगा तुमको, तो किस तो सबसे पहला काम करना है अपना कोर्स खुद कराना। अगर कोई बद्दुआ है दे तो तुम कोर्स में क्या कहते हो, निगेटिव को पॉजिटिव करना है, खुद ही कहते हो ना, तो अब अपने आप का कोर्स कराओ। दूसरा, चैलेंज क्या देते हो, प्रकृति को भी बदल देंगे तमोगुनी से सतोगुनी बना देंगे, जब तुम्हारा ये चैलेंज है तो तुम्हारी वृत्ति में किचड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि वृत्ति में जो होगा वो वाइब्रेशंस और प्रकृति में जाएगा फिर, तो ये तुम्हारा चैलेंज है। तीसरा, तुम्हारा दिल बाप का तख्त है, यहां पर कोई किचड़ा नहीं होना चाहिए, अगर कोई दे और तुम्हें वो पसंद नहीं तो उसको लो नहीं अलमारी में रख देते फेंक देते हैं, रखते थोड़ी हो, ये सारे उदाहरण दिए बाबा ने, इस दुनिया के उदाहरण है ये, तो क्यों रखते हो, किसी ने बद्दुआ दी देने दो, हमें जब पता है हम राइट है तो कोई प्रभावित नहीं होना है किसी से, किचड़ा अंदर नहीं रखना है, ये उसका तख्त है सिंहासन है जहां वो विराजमान है, नहीं तो चला जाएगा वो किचड़ा उसको देखेगा तो। ये तीसरा काम। चौथा, एक शब्द याद रखना दुआ, यहां पर फिर से वो बात रिपीट की है, एक शब्द याद रखना मन में पक्का याद रखना, कौन सा, दुआ दो दुआ लो, इसको भूलना नहीं। पांचवा, तुम्हारे जड़ चित्र क्या करते हैं, दुआ देते, अब तक भी दुआएं दे रहे हैं, क्यों देते, क्योंकि तुमने अब दुआ दी इसलिए वो दुआ दे रहे हैं, मन्नत मांगते जाके वहां पर दुआ मांगते हैं लोग तुम्हारे जड़ चित्रों के आगे। उसके बाद में अगला पांचवा, जो भी संपर्क में आए उसको क्या करो, सहयोग स्नेह हिम्मत उमंग उत्साह, जो भी संपर्क में आए उसको ये सब देकर ही भेजो, दुआ हिम्मत सहयोग हिम्मत, वैसे नहीं जाना चाहिए कोई। अगला, मास्टर क्षमा के सागर बन जाओ, तुम क्षमा नहीं कर सकते, मास्टर क्या बन जाओ, क्षमा के सागर बन जाओ। और लास्ट, सबको निर्वाण भेजना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, निर्माण नहीं निवारण मूर्त, क्या करना है, निवारण मूर्त, ऐसा ना हो कि दूसरा हम अपनी समस्या हमारे पास लेके आए और यहां से जाए हमारी अपनी समस्या उसमें ऐड करके हम उसको भेजे, यहां दुखों की इतनी कंपटीशन लगी है, किसको सुनाओ मेरा इतना दुख है वो अपना डबल सुनाता है, किसको सुनाओ मेरे घुटने में दर्द वो बताता है मेरे दोनों घुटने में दर्द है, यहां तो दुखों की कमी कहां है लोगों के पास, किसी को कहो मेरा अमृत वेला आज मिस हुआ वो कहता है मेरा चार दिन से मिस हो रहा है कोई बात नहीं होते रहता है ये ब्राह्मण जीवन में, अप डाउन तो चलता है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसमें शांति से बैठो, मुरली नहीं पड़ी यार क्या है, मुरली पढ़ लेना है ना बाद में, एक साथ पढ़ लेने का पूरा। तो ये सात काम करने, अगर कोई बद्दू आए दे तो, पहला अपना कोर्स खुद कराना, दूसरा हमने जो चैलेंज किया वो याद करना, इतना बड़ा चैलेंज हमने करके रखा है, तीसरा पाप को दिल में बिठा के रखना, यहाँ पे कुछ भी किचड़ा नहीं होना चाहिए, वृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, उसके बाद में चौथा एक शब्द दुआ देनी है, दुआ देनी है, चाहे नींद में हो हम दुआ देते रहे, चाहे हमारे साथ किसी ने कुछ भी किया हो, ये भगवान का आदेश है हमारे लिए कि उसने कितना भी गलत व्यवहार किया, गलत शब्द बोले, कई बार दुखाया, षड्यंत्र किया, दोस्ती का व्यवहार किया और पीछे से छुरा घोंप दिया, चाहे कुछ भी किया है, आज की मुरली में तुम बहुत ऊंच हो, तुम ऊंच बाप की, तुम्हें शुद्ध अहंकार होना चाहिए, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, हम तो भूतों को ऑर्डर करेंगे, भूत क्या कोई नहीं आ सकता हमारे सामने, एक भी विकार हमारे सामने नहीं आ सकता, एक भूत हमारे सामने नहीं आ सकता है, तुम्हारी चलन बहुत ऊंची होनी चाहिए, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। सुबह था ना ये सब पढ़ा ना, पढ़ा ना पूछ रहे हम, सुनाना नहीं पूछ रहे, सुनना अलग बात है, पढ़ना अलग चीज है। अगला, तुम्हारे जड़ चित्र, हमारे ही जड़ चित्र जो अब भी दुआएं दे रहे हैं, उसके बाद में मास्टर क्षमा का सागर, क्षमा कर दो बस, क्षमा करने में ही मानता है, क्या करे, क्या उसकी गलती को अपने दिल में समा के रखे, दुर्गंध होगी अंदर, फिर जो भी संपर्क में आए उसको स्नेह दो, सहयोग दो, हिम्मत दो, उल्लास दो, उमंग दो, सब दो, और उसके बाद में लास्ट निवारण मूर्त, तो कोई बद्दू आए दे तो ये आठ आठ सात बातें करो। तो टोटल मुरली को हमने आठ बातों में डिवाइड किया, और भी थोड़ी बातें थी, टीचर से मुलाकात में तीन चीजें थी, टीचर अर्थात जो अपने फ्यूचर से फ्यूचर प्रत्यक्ष करे, वर्तमान में तुम फरिश्ता और बाद में देवता, ये पहला काम बताया। दूसरा रेल, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, घबराते हो तो क्या करते हो, सागर जाना, ऊपर ऊपर लहराओगे ना मछली हाथ में आएगी, बस मछली हाथ में आएगी, घबराते हो, कहाँ जाना है, डीप जाना है, बाप दादा के साथ, बाप दादा कंबाइंड है, कॉमा कंबाइंड रखो, क्या बोला, कंबाइंड है, बात पूरी हो गई, पर आगे स्टेटमेंट अब बढ़ा दिया कि रखो, अर्थात पहला नहीं कर रहे, बाप दादा कंबाइंड है, कॉमा कंबाइंड रखो, दो बना दिए वाक्य, पेपर आएंगे, बाप दादा ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि बातें नहीं आएगी, बातें आएंगी, पेपर आएंगे, पर निश्चित है कि तुम पास विथ ऑनर, कितने मार्क्स लेने, 33 या पास विथ ऑनर, मुरली याद आ रही है ना सारी, धीरे धीरे। तो दूसरा काम होता है वह गहराई में जाओ, डेप्थ में जाना है, हर चीज की डेप्थ में जाना है, और लास्ट एक्सरसाइज, तीसरी बात, कौन सी एक्सरसाइज करो, 500 रुपये की, कहां से कहां कूदो, यहां से पहले परम धाम से कहां, सूक्ष्म वतन, थोड़ा उल्टा तुल्टा कर दिया ना बाबा ने, देवता नहीं बोला, वही तो ट्विस्ट है वहां पर, परम धाम बीच और फिर फरिश्ता और फिर देवता फिर पूज्य और फिर ब्राह्मण, ऐसा बोला है इसमें, बाकी हमेशा तो बोलते साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, ऊपर से नीचे आओ, इस बार बोला पहले उधर जाओ, किधर भी जाओ क्या फर्क पड़ रहा है, और किधर से भी चालू करो, ज्ञान गोली है वैसे भी, जरूरी नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, अब शरीर से ऊपर जा रही हूं, ऐसा चालू करने की जरूरत है क्या, मैं देवता हूं वहां से चालू करो योग, मैं फरिश्ता हूं वहां से योग चालू करना, उल्टा कर दो उसका सब कुछ तो अच्छा है ना थोड़ा, नहीं तो वही अपना 10 साल पहले जो कमेंट्री सुनी थी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, वो अभी भी वही चालू है, चेंज कर देना है उसको, इधर उधर कर देना है कमेंट्री को, सब गड़बड़ कर देना, पैटर्न को ब्रेक करो, नया पैटर्न क्रिएट करना है योग का, चालू ही परम धाम से करो, मैं वहां हूं अब वहां से नीचे आ रही हूं शरीर में, उल्टा कर दिया। तो ना विसरो न याद करो, रहो, रहो है वो शब्द, याद रहो। तो कोई भी याद ना आए, जो आठ बातें बताई वो भूल जाओ, और जो मुरली की आठ बातें थी उनको याद करो। ओम शांति।